أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ لیں. مجلس مدرسہ حسینی میں ہو رہی ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ مجالس حسینیہ نے آج پھر صفحے عالم کو مدرسے میں تبدیل کر دیا. شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک، بلکہ تحت الثرا سے ثریا تک، قلب مؤمن سے لے کر عرش اعلیٰ تک، بس ایک ہی فضا ہے، فضائے مجلس شبیر. کوئی اہل دل ہو تو سمجھے اس بات کو. دلوں کے آئینے صاف ہوں، ذہنوں کے آئینے پاک ہوں، سماعتیں بیدار ہوں، آنکھوں کے پردے دھلے ہوئے ہوں، تو نظر آئے گا کہ خدا کی قسم، فلک کے دامن سے حسین کے لہو کی خوشبو آ رہی. ہلال محرم نمودار ہو چکا ہے، آج محرم کی پہلی ہے. ان مجلسوں کا انعقاد اولاً و بالذات صرف اور صرف اور صرف غم امام حسین کو زندہ رکھنا ہے. ان مجلسوں کا انعقاد صرف اس مقصد سے ہوتا ہے. لیکن امام حسین امام تھے، तो इमाम का गम भी जिंदगी की इमामत करता है। ये इमाम का गम है जो जिंदगी के हर शोबे को मुनव्वर करता है। ये इमाम का गम है जो आदमी को इंसान बनाता है। क्योंकि इंसान का जो सबसे बड़ा वस्फ है बहैसियत इंसान, वो है दिल सोजी, वो है दिलों की नरमी, दिलों की रिक्कत। तमाम मखलूकात खुदा के लिए दिलों में गुंजाइश होना, हर एक का दर्द महसूस करने की सलाहियत होना। इंसान सिर्फ अपने हम गम में मुब्तला न रहे बल्कि दूसरों के दर्द व अलम को महसूस कर सके और अपने हम गम को भुला कर दूसरों के काम आ सके। ये मर्तबा दिलसोजी का गमे हुसैन सिखाता है। और इसीलिए आप देखें कि ये इस गम के मदरसे, इस गम के मकतब महदूद नहीं हैं किसी एक मसलक की हद तक या किसी एक दीन को मानने वालों की हद तक। आज दुनिया में मसीही ऐसे हैं बहुत जो मजलिसे शब्बीर मुनाकिद करते हैं। आज दुनिया में गैर मुस्लिम बहुत हैं ऐसे जो मजालिस हुसैनिया मुनाकिद करते हैं, जिक्र इमाम हुसैन करते हैं। कितने मसीही मुसन्निफीन हैं, कितने हिंदू मुसन्निफीन हैं, शुआरा अदबा, जिन्होंने नसर में और नज़्म में न जाने कितनी किताबें लिखी हैं। किस पर? हुसैन इब्न अली। और सब यक जबान कहते हैं कि हुसैन हमारे हैं, हुसैन तो इंसानियत के हैं, हुसैन उसी तरह सबके हैं जिस तरह हुसैन का परवरदिगार सबका है। जैसे हुसैन का परवरदिगार सबका है वैसे ही हुसैन सबका है, और हुसैन का गम भी सबका गम है। और अब किसी को बात दिल में लग जाए तो लग जाए, मगर कहना पड़ता है जिस दिल में गमे हुसैन का एहसास नहीं है वो कुछ हो सकता है, किसी इंसान का दिल नहीं हो सकता। मैंने अर्ज किया कि इमाम का गम है तो यह गम भी जिंदगी की इमामत करता है। और इसी लिहाज से इन मजलिसों में मौजूआत का तनव्वु पैदा होता है। यानी ये बात याद रखिएगा कि अव्वलन व बिद्दात, अव्वलन व आखिरन, इन मजलिसों के इनेकाद का सबब और फलसफा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एहयाए अम्र आले मोहम्मद है। गमे हुसैन को जिंदा रखना है, जिंदा रखना है। ये तो एक हमारी जबान में गोया एक रोजमर्रा हो गया है, असल में तो गमे हुसैन हमें जिंदा रखता है। गमे हुसैन को जिंदा रखने की ताकीद अगर मासूमीन ने की है, अइमा अहले बैत ने की है, बुजुर्गान दीन ने की है, औलियाउल्लाह ने की है, तो इसीलिए कि यह गम हमें जिंदा रखता है। यह गम हमारे दिल को जिंदा रखता है, یہ غم ہمارے ذہن کو زندہ رکھتا ہے, یہ غم ہماری روح کو زندہ رکھتا ہے. تو اولا و بالذات غم حسین ہے, لیکن امام کا غم ہے تو اس میں موضوعات کا تنوع پیدا ہوتا ہے. کون امام؟ جس کو پیغمبر نے پہچانوایا تھا. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور یہ مقرر عرض کروں گا, تمام ملت اسلامیہ سے دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا, اللہ کے بعد, اللہ کے کلام کے بعد اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کا کلام حجت ہے, اور اس کے بعد وہ حجت ہے جسے رسول حجت بنا دے. اور جن جن کو حضور نے حجت بنایا ہے ان میں سے ایک حضرت امام ابو عبداللہ الحسین ایک نہیں, نہ جانے کتنی حدیثیں ہیں. بچے ہیں حسین بظاہر, بچپن کا زمانہ ہے, مگر آغوش میں لے کر ممبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں کون؟ حضور. اور فرماتے ہیں ھذا حسین فعرفوہ, یہ حسین ہے بس اس کی معرفت پیدا کر لو. یہ بے سبب تو نہیں تھا کہ وہ رسول جو خدا کی معرفت کرانے کے لیے آیا تھا وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ حسین ہے اس کی معرفت پیدا کر لو, اسے پہچان لو, اسے پہچان لو. یہ حسین کی ذات گرامی کو ایک حجیت عطا کرنا ہے. یا یہ ارشاد گرامی کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ کیا ہے؟ یہ ایک فقرہ امام حسن اور امام حسین دونوں اماموں کو حجیت عطا کرتا ہے. یہ بحث بجائے خود بہت طویل ہو جائے گی, انشاءاللہ پھر کسی اور ممبر پہ اسے جاری رکھوں گا, لیکن اس وقت جس نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی غم حسین کی بات ہوگی, جب بھی ذکر سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام ہوگا, تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بات میں تنوع پیدا ہوگا, اس حد تک تنوع پیدا ہوگا جس حد تک زندگی کا تنوع ہے. وجود کی ہر سطح پر حسین کی روشنی پہنچے گی, اور اسی مناسبت سے دقیق سے دقیق اور عمیق سے عمیق موضوعات ممبر پہ چھڑ جاتے ہیں. اب اس مرتبہ جو موضوع میرے پیش نظر ہے بإذن الٰہی, وہ بعض وجوہ سے, بعض حیثیتوں سے مشکل ترین موضوعات میں سے ہے. قرآنی علوم میں, علوم تفسیر میں, علوم دین میں مشکل ترین موضوعات میں سے ایک یہ موضوع ہے جسے آج میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہاں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور وہ ہے موضوع متشابہات قرآن سے متعلق. لیکن عنوان گفتگو یہ ہوگا کہ امام حسین اور حقائق تعویل, امام حسین اور حقائق تعویل. یہ موضوع ذہن میں رہے, موضوع بہت وسیع ہے, یہ نو تقریروں میں موضوع مکمل نہیں ہوگا, لیکن موضوع کے مقدمات یا بعض دلائل ضرور عرض کرنے کی کوشش کروں گا. वैसे भी जो हमारे पुराने सामईन हैं वो जानते हैं कि मैं मौजू शुरू करता हूँ, ख़त्म तो कभी नहीं करता। ये मेरा उसलूब है, मैं मौजू शुरू करता हूँ, छेड़ता हूँ, सवालात कायम करता हूँ और गुजर जाता हूँ, ताकि आप होमवर्क भी तो करें। यहाँ पर चंद जुमले और अर्ज कर दूँ। मौजू का तज़किरा किया है अभी सिर्फ मैंने, मुझे अंदाज़ा है सामने ये इतने माइक लगे हुए हैं, इतने गोया कैमरे लगे हुए हैं, और मशरक़ से मग़रिब तक न जाने कितने मुल्कों में लोग इन गुफ्तगुओं को समाअत फरमा रहे हैं। तो दस्ते अदब जोड़ के चंद गुजारिशात हैं। देखिए, ज़रूर जदीद टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है, और जो आजकल वसाइल हैं, बहुत से लोग घर बैठे मजलिसें सुन सकते हैं, मगर ऐसा कीजिए नहीं। घरों से निकलें, घरों से निकलें। मकामे मसाइब नहीं है, मगर मैं एक जुमला कहूँगा, घरों से निकलें, घरों से बनाम हुसैन कदम बाहर निकालें, और फिर उस तजर्बे को महसूस करने की कोशिश करें, हुसैन कैसे मदीने से निकले। दस्ते अदब जोड़ के ये अज़ाए हुसैनी सिर्फ सुनने सुनाने की चीज नहीं है, तजर्बे से गुजरें, निकलें घरों से, घरों में बैठिए। 10 दिन, ये 10 रातें घर में बैठ के आप सुन सकते हैं, चॉइस है आपके पास। आप बहुत से चैनल्स ब्राउज कर सकते हैं, बहुत से जाकिरों को सुन सकते हैं, जो आपकी पसंद का जाकिर हो आप सुने, ये सब अपनी जगह फायदे हैं, बाद में सुन लीजिएगा। ये 10 दिन घर से निकले, फर्श अज़ा पर आकर बैठें, पहली बात। दूसरी बात, जब घर से निकल रहे हो तो तन्हा ना निकलिएगा, खातून खाना को आप आबादा कीजिए। तुम नहीं चलोगी हुसैन की मजलिस में, बच्चों को आमादा करें, बेटा चलो आका हुसैन की मजलिस, सबको उस तजर्बे में शरीक करें जैसे आका हुसैन पूरे कुनबे को लेकर निकले थे अल्लाह की राह, अल्लाह की राह में पूरे कुनबे को लेकर निकले थे ना हुसैन। ये तजर्बा कीजिए, घरों में ना बैठिए। ये 10 दिन मंसूबा बंदी के साथ घरों से निकलें, मजलिसों में जहां भी हों, आप अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, चीन में हैं, जहां भी हैं, किसी एक जगह मजलिस हो रही होगी, किसी इमाम बारगाह में, किसी मस्जिद में, किसी मोमिन के घर पर, किसी हॉल में, आप वहां जाएं बनाम हुसैन, शिरकत करें, देखें इस तजर्बे से आपकी रूह में क्या तरक्की पैदा होती है, और आपके बच्चों की कैसी तरबियत होती है। इस आज़ादारी की बरकतें, इस आज़ादारी के समरात, इसके फ्यूज, इसके बरकात आपको अंदाजा नहीं है, तजर्बा करें, ये पहली चीज। और दूसरी चीज, हाँ, जब आप घर से निकलेंगे और फर्श अज़ा पे आएंगे तो यकीनन फिर ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इल्तिफात तवज्जो से सुने, रस्मन ना सुने, रस्मन ना सुने, सरसरी अंदाज में ना सुने, पूरे वजूद से हमतन गोश होकर सुने जिक्र हुसैन, दिल के कान भी खुले हुए हों, दिल से सुने जिक्र हुसैन। गिरिया करें तो आंखों में आंसू तो आएंगे ही, दिल में महसूस करें उस गम को, उस अलम को, उस कर्ब को। एक अंदाज में जुमले जबान पर आ रहे हैं तो कहता चला जाऊं, क्या महसूस करें? आप में बहुत से बुजुर्ग यहां बैठे हैं, आपने अपने बेटे को, अपने पोते को, अपने नवासे को, अपनी नवासी को कभी उठा के सीने से लगाया होगा। क्या ठंडक मिलती है दिल को, क्या इत्मीनान होता है, क्या एक खास लज्जत होती है जो किसी लफ्ज में अदा नहीं हो सकती। और उसके बाद अगर वो बच्चा बिछड़ जाए तो क्या कर्ब होता है। बस सोचिएगा कि रसूलुल्लाह हुसैन को कैसे सीने से लगाते थे, और जब हुसैन जुदा हुए रसूल से तो रसूल पे क्या कयामत गुजरी। तजरे बाकी ये आजादारी रस्मी नहीं है, ये रस्म नहीं है, ये रिचुअल्स नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, तवज्जो दिला रहा हूं, मुहर्रम है, मुहर्रम में सियाह लिबास पहने मर्द भी ख्वातीन भी, मगर ये लिबास सोगवारी का लिबास है, फैशन का लिबास नहीं है, सोगवारी का लिबास। सोगवारी इस माना को मुजस्सम कीजिए, आपका चेहरा नजर आए सोगवार, आपका लिबास नजर आए सोगवार, देख के इंसान समझे कि इसे कोई सदमा है, पूछे कि क्या हुआ है तो बताओ कि हुसैन कौन थे। मजलिसों के तबर्रुक का एहतमाम करें, खास तौर से ये 10 दिन जरूर एहतमाम करें, मगर बस तबर्रुक की हद तक, उसमें भी सोगवारी की शान हो। मुहर्रम को फेस्टिवल न बनने दीजिए, मुहर्रम को फेस्टिवल न बनने दीजिए। तबर्रुक के नाम पर लजीज तरीन गजाएं, ये 10 दिन, ये 11 दिन, इससे परहेज कीजिएगा। तबर्रुक तकसीम जरूर कीजिए, बताऊं फिकी हुक्म तबर्रुक का, अमल है मासूम का, फिकी अहादीस का मजमुआ वसाइलुश शिया, अल्लामे शेख हुर्र आमिली, उन्होंने अपनी किताब वसाइलुश शिया में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलातो वसलाम, का अमल लिखा है। अमल, आपका अमल ये था कि करबला के बाद से जब असीराने अहले बैत मदीने आए थे तो फिर बनु हाशिम में बतौर खास बराबर मजलिसें ही मुनक़िद होती थीं। आका हुसैन के लिए फर्श अज़ा बिछता था, सफ़े अज़ा रोशन होती थी, शम अज़ा फरूजा रहती थी, सब मजलिस में मशगूल होते थे, और जहां जिस वक्त मजलिस मुनक़िद होती थी जनाब इमाम सैयद सज्जाद अपनी तरफ से खाना तैयार करा के वहां तबर्रुक के तौर पे तकसीम कराते थे। किसका अमल है? इमाम सज्जाद। खाना तकसीम करें, तबर्रुक तकसीम करें सादगी के साथ, गम और हुज़्न का लिहाज रखते हुए। ये चंद चीजें थी जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा था। निकलें घरों से तन्हा ना निकलें, बच्चों के साथ निकलें, खातून खाना के साथ निकलें, और फिर देखें कि आका हुसैन की मजलिसों में शिरकत के बाद क्या रूहानी तबर्रुक मिलता है, क्या मानवियत हासिल होती है। दुनिया के किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में आपको यह एहसास नहीं होगा पूरे वजूद के साथ कि आपके वजूद की मानवियत क्या है, इल्ला मजलिस हुसैन। ये मजलिसें बताती हैं कि आपकी मानवियत क्या है, आपकी खिलकत का हदफ क्या है, मकसद क्या है। यहां जो उलूम हासिल होते हैं वो कहीं नहीं हासिल होंगे। अब मैं अपना पुराना जुमला दोहरा दूं कि ये वो मदरसे हैं कि जहां बात कुरान ही से शुरू होती है और कुरान ही पे खत्म होती है, यहां बात कुरान सामित से शुरू होती है, कुरान नातिक पे खत्म होती है। और ये जुमला भी जहनों में महफूज होगा कि माह मुबारक रमजान तंजील कुरान का महीना है, ये माह मुहर्रम है जो तावील कुरान का महीना। वो शब कद्र है जिसमें तंजील मुकद्दर थी, वो रोजे आशूर है कि जिसमें तावील मुनव्वर हुई है। एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद। और बस इसी मुनासिबत से इस मरतबा ये बात जहन में आई कि गुफ्तगू इस उन्वान से हो, इमाम हुसैन और हकायक तावील। मैंने अर्ज किया कई हैसियतों से ये मौजू या उन्वान मुश्किल तरीन अनामीन में से है, इल्मी, फिक्री, कुरानी, तफसीरी और फिक्री भी। और इस सिलसिले में तकरीबन जामे तरीन आयत यह आयत है कि जो सूरह मुबारक है आले इमरान की मैंने आप हजरात के सामने तिलावत करने की सआदत हासिल की। इरशाद इलाही है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इरशाद इलाही है कि हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब, वही है वो परवरदिगार जिसने ए नबी, ए रसूल, ए हबीब तुझ पर किताब नाजिल की। मिन्हु आयातुन मुहकमात, इसी किताब में वो आयतें भी हैं जो मुहकम आयतें हैं, व उखरो मुतशाबिहात, और कुछ और आयतें हैं कि जो मुतशाबिहात हैं। आज यहीं पे ठहर जाओ क्योंकि जो बुजुर्ग हजरात हैं उनके लिए तो मुहकम और मुतशाबे का लफ्ज शायद वाजे हो, रोशन हो। जो हमारे नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए मुहकम और मुतशाबे ये लफ्ज भी मुश्किल होगा और कुरानी अल्फाज हैं। और एक पूरा इल्म है उलूम कुरान में से जिसको कहते हैं इल्मुल मुहकम वल मुतशाबे या इल्मो मुतशाबिहातिल कुरान। मुहकम इसका रूट वर्ड है हे काफ मीम, इसी से हुक्म है, इसी से हाकिम है, इसी से महकूम है, इसी से हिकमत है, इसे बहुत से अरबी जबान में एक रूट वर्ड से पूरा एक तनावर दरख्त लफ्जों का वजूद में आ जाता है। इसी से मुहकमात, या मुहकमात से मुराद वो आयतें हैं कुरान मजीद की जिनके मानी रोशन है, जिनके मानी आम है और रोशन है और हर एक समझ सकता है, फौरन समझ नहीं जाता, समझ सकता है। समझ सकता है कि मानी है कि जब कोशिश करेगा तो समझ लेगा, ये नहीं कि बस लफ्ज पे निगाह पड़ी, नजर पड़ी और समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। किसी से सुनी आयत और बस समझ में आ गई, नहीं, समझ सकता है, हर शख्स समझ सकता है। ये सकत जो है ना, सकता है, इसमें बड़ी इस्तेदाद चाहिए, इसमें भी सलाहियतें चाहिए, इस्तेदाद चाहिए, आमादगी चाहिए, तवज्जो चाहिए, इश्क चाहिए। इश्क तो हर जगह दरकार है। खुदा की मोहब्बत नहीं होगी, रसूल खुदा से इश्क नहीं होगा, आले रसूल की कदर शनासी नहीं होगी, कुरान कभी समझ में नहीं आ सकता। इसलिए कि कुरान आपको मुंह ही नहीं लगाएगा, समझ में कैसे आएगा, मुंह नहीं लगाएगा। ये कौन शख्स है, बदबू आ रही है इससे, खुशबू मोहब्बत खुदा नहीं है, वो नखत इश्क रसूल नहीं है, वो नखत इश्क आले मोहम्मद नहीं है, ये हमारा नहीं है। जहां मोहब्बत खुदा और मोहब्बत रसूल आले रसूल ना हो वो कुरान का नहीं है। हो कैसे सकता है कुरान का? कुरान नाजिल किस पर हुआ? किस पर नाजिल हुआ? रसूल पे नाजिल हुआ। कुरान नाजिल हुआ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वाले। और कुरान कहां नाजिल हुआ, किस पर नाजिल हुआ, यह आपने बता दिया। कहां नाजिल हुआ? कुरान के नाजिल होने का सिलसिला काबे से नहीं शुरू हुआ, खाने अबू तालिब से शुरू हुआ है। خانہ ابو طالب سے غار حرا تک اور غار حرا سے خانہ ابو طالب تک۔ میں اپنے اب خطیبانہ انداز میں کہوں، حاجی جاتا ہے تو صفا و مروہ سے تک، مروہ سے صفا تک سعی کرتا ہے۔ جبرائیل جب قرآن لے کے آتے تھے تو خانہ ابو طالب سے غار حرا تک، غار حرا سے خانہ ابو طالب تک۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ دیں۔ نہ جانے کئے ہزار آیتیں خانہ ابو طالب میں اتری ہیں، اندازہ ہے آپ کو۔ مکی آیتیں زیادہ تر، مکی سورے کہاں نازل ہوئے؟ خانہ ابو۔ رسول کی منزل کہاں تھی؟ اصل رسول کی ولادت کہاں ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کہاں ہوئی؟ یہ طے ہے کہ کعبے میں نہیں ہوئی۔ کوئی ایک ضعیف سے ضعیف قول بھی نہیں ہے کہ کعبے میں ولادت پیغمبر ہے۔ پھر کہاں ہے؟ مجھے یاد آ گیا بے اختیار، اسی ممبر سے شاید 15-16 برس پہلے کہہ چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی۔ راز کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس فقیر کی سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ حضور کی حیثیت کیا ہے؟ اس کائنات کے سب سے بڑے معلم توحید ہیں مصطفیٰ۔ یہ حضور کی شایان شان نہیں تھا کہ وہ ایسی جگہ پیدا ہو جہاں پہلے سے 360 بت رکھے ہوئے ہوں۔ چشم مشیت نے مکے پہ نظر ڈالی، کہیں وہ گھر مل جائے جہاں کوئی بت نہ نظر آ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اللہ آپ کو پاکیزہ نفس عطا کرے اور نفس رحمانی کے فیوزات آپ تک پہنچیں۔ خدا کی قسم، یہ تاریخ کا اعجاز ہے کہ حضور کی ولادت اس جگہ ہوئی جہاں کوئی بت نہیں تھا، اور وہ بس ایک ہی گھر تھا یا چند گھر اور تھے، لوگوں کو خبر نہیں تھی، ان گھروں میں کوئی بت نہیں تھا۔ ये मामूली बात नहीं है भाई। खाने काबा के दरवाजे तो सबके लिए खुले हुए थे ना, मजबूरी थी तो जिसका जी चाहता था ले जाके बुत रख देता था अपने खानदान का। अबू तालिब का घर अबू तालिब का घर था, अबू तालिब की इजाजत के बगैर कोई जा नहीं सकता था उसमें, तो मजाल किसकी थी कि वहां बुत रख देता। जहां कोई बुत नहीं था वहां तौहीद का सबसे बड़ा मुअल्लिम पैदा हुआ, और फिर पैगंबर पैदा हुए तो यूं ही पैदा हुए थे। जनाबे आमिना बिनते वहब के साथ भी कुरैश के घरानों और कुरैश की खवातीन की रश्क की और हसद की वही कैफियत थी जो जनाब खदीजतुल कुबरा और जनाब फातिमा बिनते असद के साथ रही। क्योंकि जो नूर था पेशानी है अब्दुल्लाह में, उस नूर की खातिर कितने थे जो चाहते थे कि इस नूर के हिस्सेदार हम बन जाएं। लेकिन जब जनाब आमिना बिनते वहब उस नूर की अमानतदार ठहरी तो फिर रश्क हसद दरमियान में आ गया और तन्हा छोड़ दिया गया। अब जब वक्त विलादत था तो जाहिर है कि अजरू अहकाम जाहिरिया मदद की जरूरत होती है। घर अबू तालिब का है और वहां हुराने बहिश्ती का नुजूल हो रहा है, जन्नत से हूरे नाजिल हो रही हैं और जन्नत से जनाब मरियम तशीफ ला रही हैं और जन्नत से जनाब आसिया तशीफ ला रही हैं और वो मुखद्दरात इस्मत और तहारत तशरीफ ला रही हैं कि जिनको अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इज़्ज़त दिया कि जाओ आमिना की मदद करो, मुहम्मद की विलादत है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही। उस घर की क्या शान होगी। अब मैं जाहिर है छोटी छोटी बातें छोटी छोटी मिसालें भी देनी पड़ती हैं ना बच्चों के लिए। किसी साहब के घर पे किसी कंट्री के प्रेसिडेंट साहब आ जाएं, यूं ही आ जाएं, तब भी वो कितना नाज करेगा। मेरे घर आए थे, हालांकि कोई हैसियत नहीं है आपकी, लेकिन आपके घर आए थे आप नाज करेंगे हैं? एक इतनी सी मिसाल काफी है। कोई भी अहम शख्सियत आ जाए कराची में किसी मोमिन के घर पर, कभी हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सिस्तानी तशरीफ ले आए तो कितना नाज करेगा। रहबरे आली कदर आयतुल्लाह अल-उज़्मा खामेनेई कहीं तशरीफ ले आए कितना नाज करेगा वो, किसी के घर आ जाए है? अब मक्के में हजरत अबू तालिब का घर है और वहां जिब्राइल आ रहे हैं, कुरान नाजिल हो रहा है, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत हो रही है। और ऐसे वाकयात इत्तेफाकी नहीं होते। और ये तो मैंने मिसाल अर्ज कर दी कि किसी के घर आ जाएं, सिस्तानी साहब आएंगे तो किसी के घर आ जाएंगे, जिसके घर आएंगे उसके घर आएंगे, किसी के घर तो नहीं आएंगे ना। प्रेसिडेंट साहब कहीं जाएंगे तो यूं ही तो नहीं चले जाएंगे, कोई ना कोई अहमियत होगी उस साहेब खाना की भी। तो बस याद रखिए कि जिस आगोश तरबियत में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम को अहक सुबहानहु व तआला ने सुपुर्द किया था उसकी कभी तौहीन न कीजिएगा, ये भी तौहीन रिसालत होगी। अपने अपने दिलों को रोशन कीजिए और गलत तारीखें पढ़कर अपने दिलों में कुफारे कुरैश के कीनों को न पालिए। कुफारे कुरैश को हसद था अबू तालिब से,
کفار قریش ابو طالب کے دشمن تھے, کیوں؟ اس لیے کہ خاتم النبیین کا حمایتی بنا ہوا ہے. کفار قریش کو ابو طالب سے کیا شکایت تھی؟ سب حضرت ابو طالب کو سید بطحا کہتے تھے, سید و سردار مانتے تھے, سید و سردار مانتے تھے تمام مشرکین و کفار, مومنین و مشرکین سب, بت پرست اور غیر بت پرست سب ابو طالب کو سید و سردار مانتے تھے. پھر اگر دشمنی پیدا ہوئی تو کس بات پر؟ کیا جناب ابو طالب نے کسی کی خیانت کی تھی؟ کوئی خون کیا تھا؟ کسی کی امانت واپس نہیں کی تھی؟ کسی کو کوئی اذیت پہنچائی تھی؟ کوئی الزام ہے ابو طالب پر سوائے ایک الزام کے, محمد کے لیے سینہ سپر رہتے تھے؟ تو انہیں بغض تھا ابو طالب سے, آپ کو کس لیے آئے؟ خبردار, کوئی ایسی بات نہ کیجیے گا جس سے رسول کو کہیں اذیت پہنچے, اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے توہین رسالت لازم آئے. رسول اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاکم اللہ, وقت گزر گیا, میں تو بس آج ایک ہی جملہ شاید عرض کر پایا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے محبت خدا شرط اول و آخر محبت خدا ہے, اس کے بعد محبت و عشق رسول, اس کے بعد محبت و عشق اہل بیت رسول, آل رسول. یہ جہاں نہیں ہے وہ انسان قرآن کا ہو ہی نہیں سکتا, اس سے قرآن کا کیا رشتہ ہے؟ یعنی ابتداء و انتہاء, آغاز یا انجام, حدوثا و بقاء. قرآن مجید نازل ہوا کس پر؟ قلب پیغمبر پر. جاتے جاتے پیغمبر نے قرآن مجید سپرد کس کے کیا؟ وصیت پیغمبر یاد کرے نا, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر, قرآن اور عترت, اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. قرآن نہ مصطفیٰ سے جدا ہو سکتا ہے نہ آل مصطفیٰ سے, تو جو مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا وفادار نہ ہو کچھ ہو سکتا ہے, اہل قرآن نہیں ہو سکتا. اگر اہل قرآن ہونا ہے تو سب سے پہلے قرآن کہاں سے ملے گا؟ پریس سے, بک شاپ سے, لائبریری سے؟ نہیں, دھوکہ کھا گئے آپ, فریب میں مبتلا ہیں, نالج نہیں ہے آپ کو, ایلوژن آف نالج ہے, فریب آگہی میں مبتلا ہیں یا ابلہی میں مبتلا ہیں. قرآن ملے گا تو سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس لیے ایسی کوئی تفسیر معتبر نہیں ہو سکتی جو اس التزام کے ساتھ لکھی جائے कि उसमें सब कुछ तो हो मगर कहीं रसूल और आले रसूल का रेफरेंस ना आए। वो तफसीर तफसीर कुरान नहीं है, तफसीर बिर्राय है। वो तफसीर तफसीर बिर्राय है, तफसीर कुरान नहीं है। तफसीर कुरान वही होगी जिसमें रसूल का बार बार तस्करा हो। और अब फिर एक जुमला अर्ज कर दूं, ये जुमला जरूर माजी में भी अर्ज कर चुका हूं मुतअद्दिद बार और मुस्तकबिल में भी अर्ज करता रहूंगा हमेशा कि कुरान मजीद अल्लाह सुबहानहु व तआला ने ऐसी सनअत में नाजिल किया है। ये सनअत, ये अदबी इस्तिलाह के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा हूं बल्कि ज्यादा गालिब जंबा वही है। उलूम बलागत में, फनून बलागत में एक इल्म है, इल्म बदीय, जिसमें सनाए और बदाए से बहस होती है, यानी आप अपने कलाम को किस तरीके से सजा कर पेश करें कि ज्यादा से ज्यादा मुअस्सिर हो जाए। ये जुमला याद रखिएगा, कलाम सजाता क्यों है इंसान? ताकि सामे उसे पूरी जाजिबियत से कबूल करे। अपनी तकरीर को, तहरीर को, शायरी को, नसर को इंसान क्यों सजाता है? ताकि पढ़ने वाला सुनने वाला जज्ब हो जाए उसमें, हैं? तो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कुरान को नाजिल किया है ऐसी सनअत में कि मतन कुरान सीरत मुस्तफा से जुदा हो नहीं सकता। न कुरान रसूल से जुदा हो सकता है और न बनस से रसूल, इसलिए कि यह रिवायत सहीह सनद है, मामूली सनद नहीं है। इसकी बहुत असहुस्सहाह में शुमार कीजिए, सही तरीन हदीसों में से एक ही है तमाम मकातिब इस्लामिया में। कोई झुठलाएगा तो झूठा ही होगा, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, कोई झुठलाएगा तो झूठा ही होगा। ये सही तरीन हदीसों में से है, हजरत इमाम मुस्लिम ने भी लिखी है, इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम में भी है और तमाम अइमा हदीस ने लिखा है। हुजूर ने जाते जाते कहा इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन, और ये एक नहीं एक से जायद मकामात पर कहा है, बार बार कहा इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन, मैं जा रहा हूं दो नफीस चीजें, दो गरा बहा चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरे अहले बैत, मेरी इतरत, और ये दोन लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैल हौज, ये एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते जब तक मुझसे आकर हौजे कौसर पर मुलाकात ना करें। तो जो कुरान से वफादारी रखना चाहता है उसे अहले बैत का वफादार होना होगा, और अहले बैत मुस्तफा इतरत मुस्तफा से दूरी इख्तियार करके कोई कुरान से नजदीक नहीं हो सकता, न कुरान से नजदीक हो सकता है, न रोजे हशर मुस्तफा की जियारत से मुशर्रफ हो सकता है, न आबे कौसर से सैराब हो सकता। सलावत पढ़ दे मोहम्मद, हाँ खुदा की मोहब्बत हो, रसूल खुदा की मोहब्बत हो, अहले बैते रसूल की मोहब्बत हो, और फिर कुरान को इंसान पढ़े तिलावत करे तो कुरान उससे गुफ्तगू करता है, कुरान उससे गुफ्तगू करता है, कुरान खुलता है उसके सामने। जैसे सुबह के वक्त आप चमन में जाएं, कोई बंद कली हो और उसके बाद उसी वक्त नसीम सहर नसीम सुबह उस पर से गुजरे और वो कली चिटक के फिर खिल के गुलाब बन जाए, तो जब आप मोहब्बत खुदा की शमीम के साथ, जब इश्क रसूल की नसीम के साथ, जब मोहब्बत अहले बैत की नखत के साथ, जब जुजदान से कुरान निकालेंगे तो वो उसी तरह खिल जाएगा आपके सामने, और उसकी खुशबू मशा मशा में जहां को मुअत्तर करेगी, उसके अनवार, उसके मानी, उसका रंग, उसकी नखत सब आपके वजूद में जज्ब हो जाएगी, फिर कुरान आपका होगा, आप कुरान के होंगे। कुरान पढ़ें اور پھر محکمات بھی روشن ہوں گے اور متشابہات بھی. بس آج یہ تمہید تھی, وقت ختم ہو گیا. ذہن میں رہے موضوع, انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی, اور امید ہے کہ کسی حد تک حق ادا کر سکوں گا انشاءاللہ. امام حسین اور حقائق تعوین, قرآن مجید کو پڑھیں مکتب حسینی میں, قرآن مجید کے رموز کو منکشف کریں, اسرار کو منکشف کریں, در کو دریافت کریں آقا حسین کی روشنی میں, ان کی محبت میں, ان کی محبت کے ساتھ, ان کی رہنمائی میں, ان کے اقوال, ان کے ارشادات, ان کی سیرت. دیکھیے حسین کا ہر قدم قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ اٹھتا ہے, ہر نفس قرآن کے ساتھ ہے. آج پہلی محرم ہے, تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ جب آقا نے فیصلہ کیا کہ اب مدینے سے جانا ہے تو اس وقت بھی قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے. جب مکہ قریب آیا اس وقت بھی آیت کی تلاوت کر رہے تھے. یہ سب روایتیں ہیں نا, یہ یوں ہی تو نہیں ہے. اور قبل اس کے کہ ان آیتوں کی طرف اشارہ کروں, ایک بات عرض کر دوں, یہ تاریخی ہے. آقا حسین چھپ کر مدینے سے نہیں گئے تھے, کسی ایسے راستے سے نہیں گئے تھے جو شاہراہ عام سے ہٹ کر ہو. اور ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, آپ بھی گریا کریں گے, خدا کی قسم جب آقا حسین مدینے سے چل رہے تھے تو صبح کا وقت تھا, دن کی روشنی تھی, شاہراہ عام سے مدینے سے مکے جا رہے تھے, اور مدینہ کا پورا شہر کا شہر کھڑا ہوا حسین کو وداع کر رہا تھا. نہ جانے کتنی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اشک باری ہو رہی تھی, حسین مدینے سے جا رہے ہیں. آج سے پہلے آپ نے شاید یہ جملہ نہ سنا ہو. تجزیہ نہیں کرتے لوگ, تمام کتابوں کا احاطہ نہیں کرتے. آقا حسین جب گئے ہیں تو خاموشی سے نہیں گئے ہیں. بہت سے اصحاب اسی لیے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے, جنہوں نے لجام فرس تھام تھام کے کہا فرزند رسول نہ جائیے. اور اس موقع پر بار بار آقا کو کہنا پڑا کہ مجھے میرے نانا نے حکم دیا ہے, بیٹا جاؤ کربلا جاؤ. وقت تمام ہو گیا تو بس دو فقرے دہرا دوں, آپ کے لاکھوں بار کے سنے ہوئے ہیں, لاکھوں بار کے سنے ہوئے, لیکن دیکھیے نا اس میں المناکی کتنی ہے. آقا حسین نے فرمایا میرے نانا نے کہا ہے اخرج یا بنی الى العراق, میرے بیٹے حسین عراق کی طرف جاؤ, جاؤ کربلا جاؤ. شاء اللہ یراک قتیلا, اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تمہیں اپنی راہ میں ذبح کیا ہوا دیکھے. اور جب کسی نے کہا کہ یبن رسول اللہ اگر جا رہے ہیں تو تنہا تشریف لے جائیں, مردوں کو لے کر جائیں, بے شک مسلم ابن عقیل کو لے کر جائیں, بے شک عباس کو لے کر جائیں, بے شک علی اکبر کو لے کر جائیں, ارے زینب کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ نبی زادیوں کو ساتھ میں کیوں لے جا رہے ہیں؟ ایک ہی جملہ تھا, شاء اللہ ان یراہن سبایا, ارے اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ اسیر ہو, یہ اسیر ہوں گی تو دین آزاد ہوگا, یہ سربرہنا ہوں گی تو دین کا پرچم بلند ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضاً بقضائه وتسلیماً لامره. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے. پروردگار معبود ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے, اور ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما,
اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہراتے ہیں۔